शाम तक कॉलेज की थकान जैसे अदिति के चेहरे पर सच बनकर उतर आई थी। कैंटीन की हंसी, निहारिका की बातें, आर्यन का मैसेज सब पीछे छूट चुका था। कार हवेली के बड़े लोहे के गेट के सामने आकर रुकी तो सूरज ढल चुका था। आसमान हल्का नारंगी था और हवेली की दीवारों पर लगी पीली लाइटें जल चुकी थीं। आर्यन ने इंजन बंद किया और एक नज़र अदिति पर डाली। अब कैसी तबीयत है, उसने नरम आवाज में पूछा। ठीक हूँ, अदिति ने छोटा सा जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थीं, जैसे कुछ सोच रही हों। गाड़ी पोर्टिको में रुकी। नौकर तुरंत भाग कर आया और दरवाज़ा खोला। खम्मा घनी ठाकुर सा, ठाकुराइन सा, उसने सिर झुकाकर कहा। दोनों अंदर की ओर बढ़े। बस दो कदम ही चले थे कि अदिति की चाल हल्की सी धीमी हो गई। सामने ड्राइंग रूम के बीचों बीच श्यामली खड़ी थी। हल्की सिल्क की साड़ी, बाल खुले, चेहरे पर वही संयमित भाव, न ज्यादा मुस्कान न कोई खास सख्ती, लेकिन उसकी आंखें सीधी आर्यन पर टिकी थीं। अदिति का दिल एक पल को धक से हुआ। यही है वो अतीत, उसके मन ने फुसफुसाया, और अगले ही पल उसने एक फैसला किया। वो जानबूझकर थोड़ा लड़खड़ाई। आर्यन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। अरे सावधान! अदिति ने जैसे खुद को उसके सहारे छोड़ दिया। उसका हाथ आर्यन की बाह में और कस गया। श्यामली की नजरें उस हरकत पर टिक गईं। क्या हुआ, उसने आगे बढ़ते हुए पूछा। आवाज में हल्की चिंता थी, लेकिन आंखों में कुछ और, जैसे अचानक आई दूरी का एहसास। आर्यन ने अदिति को संभालते हुए कहा, सुबह से ही थोड़ा ऐसे कर रही है, कॉलेज में भी बोली थी कि थका महसूस कर रही है, शायद हल्का बुखार हो। अदिति ने जानबूझकर अपना सिर आर्यन के कंधे के करीब झुका लिया। कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर सा। आर्यन की पकड़ और मजबूत हो गई। सीधा चल पा रही हो? हम्म, उसने धीमे से कहा, लेकिन कदम जानबूझकर धीमे रखे। श्यामली अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसने हाथ बढ़ाकर अदिति का माथा छूने की कोशिश की, लेकिन अदिति हल्के से पीछे हट गई, इतना कि साफ इनकार ना लगे लेकिन दूरी बन जाए। डॉक्टर को फोन करना चाहिए, श्यामली ने गंभीर स्वर में कहा, इन दिनों वायरल चल रहा है। आर्यन ने एक पल को अदिति की तरफ देखा। कर दूं? नहीं, अदिति ने तुरंत कहा। आवाज अपेक्षा से तेज निकल गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, इतना कुछ नहीं है, बस रेस्ट चाहिए। श्यामली की आंखें उसे एक पल की जल्दबाजी को पकड़ चुकी थीं। फिर भी चेकअप, उसने फिर कहना चाहा। मैं देख लूंगा, आर्यन ने शांत लेकिन स्पष्ट लहजे में कहा। तुम टेंशन मत लो, तुम पहले ही कितना काम करती हो, सबका ख्याल रखती हो। तुम टेंशन मत लो, ये संबोधन हवा में हल्का सा अटका। अदिति ने वो शब्द साफ सुना, श्यामली ने भी। एक पल को कमरे में अजीब सी चुप्पी उतर आई। अदिति ने फिर से आर्यन की बाह थामी। कमरे में चलें? हाँ, आर्यन ने बिना देर किए कहा। दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। श्यामली वहीं खड़ी रह गई, नजरें उनकी पीठ पर टिकी हुईं। कमरे का दरवाजा बंद होते ही अदिति ने तुरंत खुद को सीधा कर लिया, ना कोई चक्कर ना कोई लड़खड़ाहट। आर्यन ने उसे गौर से देखा। अभी तो चल नहीं पा रही थी, अदिति ने पलकें झपकाईं। अब ठीक हो? इतनी जल्दी? उसके स्वर में हल्की शंका थी, लेकिन चिंता ज्यादा थी। अदिति ने नजरें घुमा ली। नीचे थोड़ा घबराहट हो रही थी। किस बात की? आर्यन ने सीधा पूछा। वो सवाल फिर सामने था। अदिति कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुछ नहीं, बस भीड़ थी। आर्यन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। देखो अदिति, अगर सच में तबीयत खराब है तो मजाक मत करो, और अगर कुछ और बात है तो भी बता दो। उसकी आवाज सख्त नहीं थी, बस साफ थी। अदिति ने उसके चेहरे को गौर से देखा। वही वही चिंता थी, वही सच्चाई जो कॉलेज में दिखी थी। तुम परेशान हो गए थे, उसने धीरे से पूछा। अफकोर्स, आर्यन ने तुरंत कहा। तुम ऐसे लड़खड़ाओगी तो क्या मैं देखता रहूंगा? उसका जवाब बिना सोचे आया था। अदिति का दिल हल्का सा पिघला। अगर मुझे कुछ हो जाए तो? उसने अनजाने में पूछ लिया। आर्यन ने भौहें सिकोड़ दी। ये कैसी बात है? बस ऐसे ही। ऐसे ही नहीं, उसने एक कदम और पास आते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो मैं हूं। वो शब्द साधारण थे, लेकिन अदिति के भीतर कहीं गहरे उतर गए। उसे अचानक अपने नीचे किए गए छोटे से नाटक पर हल्की सी शर्म आई। मैं सच में ठीक हूँ, उसने धीरे से कहा, बस थोड़ा थक गई थी। आर्यन ने कुछ पल उसे देखा, फिर हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन आज आराम करोगी? मैं नीचे बोल देता हूँ कि खाना कमरे में भिजवा दें। तुम? अदिति ने पूछा। तुम नहीं खाओगे? यहीं खा लेंगे। नीचे क्यों नहीं? आर्यन ने सीधा जवाब नहीं दिया। तुम्हें आराम चाहिए, बार बार सीढ़ियां मत चढ़ो उतरो। अदिति समझ रही थी, ये सिर्फ सीढ़ियों की बात नहीं थी। नीचे श्यामली थी और ऊपर उनका कमरा। कुछ देर कमरे में सन्नाटा रहा। अदिति खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर लॉन में हल्की रोशनी थी। दूर बरामदे में श्यामली की परछाई दिखाई दे रही थी। वो किसी से बात कर रही थी, शायद नौकर से। तुम दोनों, अदिति ने अचानक कहा।
हम दोनों क्या? आर्यन ने पूछा।
तुम और वो, उसने सीधे नाम नहीं लिया। आर्यन चुप हो गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ एसी की हल्की आवाज सुनाई देती रही। अदिति, उसने आखिर कहा, तुम फिर वही सोच रही हो? उसने जवाब नहीं दिया। आर्यन उसके पास आया। अदिति, अतीत बदल नहीं सकता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो आज भी वैसा ही है। अदिति ने उसकी तरफ देखा। जब वो सामने होती है तो तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? सवाल साफ था। आर्यन कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी आंखों में सवाल भी था और थकान भी। महसूस? उसने धीरे से दोहराया। हाँ, होता है, लेकिन वैसा नहीं जैसा तुम सोच रही हो। अदिति का दिल जैसे एक धड़कन रोक गया। मतलब? मतलब ये कि यादें मिटती नहीं है, पर वो यादें ही रहती हैं, आज नहीं बन जाती। उसकी आवाज शांत थी। वो लड़की मेरे अतीत का हिस्सा थी, तुम मेरे आज का। अदिति ने तुरंत नजरें फेर ली। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तुम तो सीरियस हो गए, क्योंकि तुम सीरियस होकर पूछ रही थी, आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। छोड़ो ना, उसने बात घुमाई। वैसे नीचे लॉन में जो नए पौधे लगे हैं अच्छे लग रहे थे, तुमने देखे? आर्यन समझ गया, वो बच रही है। देख लूंगा, उसने धीमे से कहा। लेकिन पहले तुम ये बताओ, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? सवाल पूछकर जवाब से डर जाती हो। अदिति ने जबरदस्त मुस्कुराकर तकिया उठाया। डर? मुझे? प्लीज, मैं बस ओवरथिंक नहीं करना चाहती। कमरे में फिर वही अनकही बातों की खामोशी फैल गई।